शांति। ज्योति बिंदु परमात्मा से, ए मेरी आत्मा तू कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर ले, तू हो जा मन में मगन। यही है राजयोग, जिसमें ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा से मिलन मनाती है, और इस मिलन के द्वारा परमानंद का अनुभव करती है। तो क्या है राजयोग, क्या है उसका आधार और क्या है उसकी विधि, ये अभी हम स्पष्ट करेंगे। अगर राजयोग को हम और सरल शब्दों में अर्थ दें तो कह सकते हैं कि राजयोग अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति, ये राजयोग है, जिसमें आत्मिक स्थिति पहले आवश्यक है और फिर यथार्थ स्मृति आवश्यक है। और स्मृति शब्द को अगर और सरल अर्थ दें तो स्मृति माना याद, और याद करना ये मन का काम है, मन याद करता है, मन कहीं जाता है और जिसको याद करता है उसका वो अनुभव करता है। ये सिंपल मनोविज्ञान है। आप एक सुखद घटना को याद करते हो तो सुख की अनुभूति होती है, और दुखद घटना को याद करते हो तो क्या होता है, दुख की अनुभूति होती है। आप किसी मित्र को याद करो तो खुशी होगी, और दुश्मन को याद करो तो नाराज हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। तो उसी वक्त अनुभूति होती है जिसको आप याद करते हो, अर्थात मन व डोर है या तार है या ऊर्जा है जो मिलन का अनुभव कराती है, और उसके द्वारा उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, जैसे या जिसकी याद, जिस प्रकार का उनसे संबंध, उनकी जिस प्रकार की भावना या जिससे संबंध करते हैं मन से, उसकी स्थिति, उसके आधार पर हमारे मन पर उसका असर पड़ता है। तो योग शब्द को हम तीन स्तर पर बांट सकते हैं। जैसे भौतिक रूप से हम देखते हैं योग का स्तर होता है वस्तुओं को जोड़ना। हम दूध में चीनी मिलाते हैं, ये भी योग है, और उसका परिणाम क्या होता है, दूध में चीनी मिलाते ही चीनी का गुण दूध में आ जाता है, और वो दूध मीठा हो जाता है। सिंपल इसका अर्थ यही है, जिसके साथ योग हुआ उसका गुण अनुभव होने लगता है। हम रेडियो ऑन करते हैं, बिजली और तार से जुड़ा हुआ है, करंट है, और जिस रेडियो स्टेशन से हम संपर्क करना चाहते हैं उसकी ट्यूनिंग करते हैं, वही मीटर बैंड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मानो संबंध जोड़ दिया रेडियो स्टेशन से, और उसी वक्त हमारे रेडियो रिसीवर पर उस रेडियो स्टेशन से जो आवाज़ आती है, जो बोलता है, वो हमारा रेडियो कैच करता है और हम वो आवाज़ सुन सकते हैं। तो रेडियो स्टेशन से योग हो गया। अगर हम कहें तो योग का सरल अर्थ यही है, संबंध, जोड़, मिलन, और उस मिलन से उसकी प्राप्ति। तो इसी प्रकार योग का भौतिक अर्थ समझना बड़ा सहज है। अब उसका दूसरा स्तर है मानसिक स्तर। मन से अगर हम किसी को याद करते हैं उसको भी योग कहते हैं। इसलिए जब भी हम किसी को याद करते हैं, मान लो किसी की चर्चा चल रही है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं किसी के साथ, और बात करते करते जैसे ही उसको याद ही कर रहे हैं और याद कर रहे हैं और अचानक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, हम उसके बारे में बोल ही रहे हैं और वो पहुंच जाता है, तो अनायास शब्द मुख से निकल आता है, क्या योग था मेरा, अभी अभी आपको याद किया और आप आ गए, ये भी योग है। और उसको हम कई बार संयोग कहते हैं, हमने कोई बात सोची और उसी वक्त वो हो गई, तो क्या कहते, क्या संयोग था, सोचा और हो गया, तो संयोग, मानो मन वहां पहुंचा और उसको वो अनुभूति हो गई और वो खींचा हुआ चला आया, वो बात हो गई, ये संयोग है। दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, ये सहयोग है, ये भी योग है। तो योग का अर्थ क्या हुआ, मिलना, जैसे विरुद्ध शब्द है वियोग, और वियोग माना बिछड़ना। तो मानसिक रूप से भी हम जिसको याद करते हैं उसके साथ योग है, फिर चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, कोई प्रसंग हो, कुछ भी जिसके विषय में सोचते उसके साथ योग है। अब मानसिक स्तर को भी समझना मुश्किल नहीं है, जैसे भौतिक स्तर को समझना मुश्किल नहीं है, तो मानसिक स्तर से भी योग होता है, याद कहेंगे उसको, और उस हिसाब से हम सब योगी है। क्या है, हम सब योगी है, हैं आप सभी भी योगी कि नहीं है, अवश्य है, क्योंकि किसी ने किसी के साथ तो योग है ही, हर वक्त मन का तो काम ही सोचना है। अब यही योग जब उस ऊंचे से ऊंचे, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, परम आत्मा से जुड़ जाता है, लग जाता है, वो राजयोग है, क्योंकि ये योग सभी का राजा है। तो योगी जरूर हैं हम, पर राजयोगी बनने के लिए कुछ आधार चाहिए, उसकी कोई विधि है, जैसे तार जोड़ने के लिए भी विधि होती है, रेडियो स्टेशन से संपर्क करने के लिए भी विधि होती है, कोई चैनल हमें चाहिए तो उसकी भी विधि होती है, टीवी पर भी कोई चैनल चाहते हैं, केबल ऑपरेटर से नहीं मिलता है तो उसका अलग वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एंगल होता है, बहुत कुछ होता है, और फिर उनको कहते हैं भाई ये भी जोड़ दो, तब उससे कनेक्शन हो जाता है। तो देखा गया है कि योगी तो जरूर हैं पर राजयोगी नहीं है, क्योंकि उस सर्वोच्च सर्वोपरि से योग नहीं है, क्योंकि उसी के लिए ही शिकायत है, अन्य किसी के लिए शिकायत नहीं करते हैं हम, लेकिन ईश्वर में मन लगाने के लिए ये शिकायत करते हैं कि क्या करे, मन तो बड़ा चंचल है, मन तो पापी है, दुष्ट है, एक घोड़े की तरह है और वो बेलगाम होके भटकता है। तो ईश्वर में क्यों नहीं लगता योग, क्यों नहीं मन की तार जुड़ती उनसे? क्योंकि पहले खुद को भूले हुए हैं। कुछ कारण है तभी तो उस कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे ना। तो पहला कारण है ये देह का अभिमान। इस देह के अभिमान के कारण परमात्मा में मन नहीं लगता, क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझ रहे हैं, तो जो भी देह से संबंधित बातें हैं वही मन में आएंगी। मान लो मैं समझती हूँ मैं एक माँ हूँ, तो बच्चे ही याद आएंगे ना, और कौन याद आएगा? मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो कौन याद आएंगे? कस्टमर्स याद आएंगे, ग्राहक याद आएंगे। मैं एक वकील हूँ तो क्लाइंट याद आएंगे, वो कानून की बातें वही याद आएंगी। मैं डॉक्टर हूँ, यही स्मृति है, यही स्थिति है, मैं डॉक्टर हूँ तो दवाइयाँ, बीमारियाँ, अस्पताल, पेशेंट, यही सब आता है। तो जैसी खुद की स्थिति होती है वैसी ही स्मृति आती है, स्थिति के आधार पर स्मृति बनती है। तो हम अगर परमात्मा से योग लगाना चाहते हैं तो आत्मा ही उससे योग लगा सकती है। देह अभिमान बीच में विघ्न बनता है, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, देह का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है। देह का संबंध तो देहधारियों के साथ है, जिस माता पिता ने इस देह को जन्म दिया उसके साथ है। और आत्मा के लिए क्या कहते हैं? भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाना है। शरीर के लिए क्या कहते हैं? मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाना है। ऐसे ही कहते हैं ना, वो कबीर का दोहा है ना, एक कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, उसको घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, वाज बनाता है मिट्टी के चीजों से, मिट्टी से। तो कहावत है, कबीर का दोहा है, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार को कहती है, हे कुम्हार तुम तो मिट्टी के घड़े बनाते हो, शेप देते हो, रौंदते हो, हाँ थप 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 करते हो ये, और आकार देते हो मिट्टी को, पर एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो मिट्टी तुम्हें रौंद देगी, यानी ये शरीर खाक में मिल जाएगा। पंच तत्वों में विसर्जित हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो शरीर जहां से आया है वहीं जाना है, अंतिम मंजिल वही है जहां से आया है। पर आत्मा की मंजिल कौन सी है, कौन सा उसका ठिकाना है? आत्मा के लिए ही कहते हैं ना, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। ये शरीर मुसाफिर नहीं है इस संसार में, शरीर तो यहाँ की उत्पत्ति है और यही खत्म होना है। लेकिन ये आत्मा के लिए कहा गया है कि तुम्हारी मंजिल कौन सी है, ठिकाना कौन सा है, मुसाफिर बताओ, क्योंकि आत्मा मुसाफिर है इस संसार में। आत्मा का घर परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परलोक आदि है। तो इसीलिए सबसे पहला कारण मन का ईश्वर में न लगने का है कि हम अपने आप को इस देह भान से जोड़ते हैं, देह से, कि मैं ये देह हूँ, ये नाम है, ये रूप है, ये गुण है, ये धर्म है, ये जाति है, ये भाषा है, पर मैं वो नहीं हूँ। ये तो अलग अलग लेबल्स लगे हुए हैं शरीर पर मैं जो हूँ इस शरीर के भीतर एक चेतन शक्ति, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मेरा मूल वतन तो परम धाम है। जब कोई परिचय पत्र लिखते हैं तो उसमें दो एड्रेस देनी पड़ती है, एक एड्रेस होती है वर्तमान पता और दूसरा पता होता है परमानेंट पता, कहाँ किस। तो वर्तमान तो आप अहमदाबाद में रहते होंगे, मान लो बड़ौदा में रहते, जहाँ भी रहते, लेकिन परमानेंट पता तो आपका कोई गांव होगा जहाँ आपके माता पिता है, आपकी जमीन जायदाद है, आपका सब कुछ है, जहाँ आपने जन्म की लिया, बचपन बिताया, अभी नौकरी धंधे के लिए आप शहर में आ गए हो। कई विदेश में रहते हैं, NRI है, भारत में आते हैं तो विदेश में, तो कहाँ कहाँ, अमेरिका में रहते हैं, विदेशों में, तो अपने गांव में जरूर जाएंगे, वो हमारा उनका परमानेंट पता है। भारत में आते हैं तो गांव तो कितना छोटा होगा, अभी अमेरिका में रहते हैं। तो आत्मा का जो मूल वतन है, जहां से आत्मा इस संसार में आई है, जहां जाना है, जिसके लिए हम कहते हैं जहां से आए वहीं जाना है, वो मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना चाहते हैं, तो कहां जाना चाहते हैं, वही आत्माओं का लोक। तो आत्मा की संपूर्ण पहचान जब हमें मिल जाती है तो उसका चिंतन, उसका मनन, उसका अनुभव, ये आत्म अनुभूति में आता है और ये राजयोग का पहला कदम है। इस देह अभिमान को हटाना पड़ेगा तब मन ईश्वर में जुड़ेगा, क्योंकि ये देह अभिमान विघ्न बनता है, रुकावट डालता है परमात्मा से मिलन मनाने में, क्योंकि परमात्मा तो विदेही है, उनको तो अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए उनसे योग लगाने के लिए ये देह अभिमान मिटाना जरूरी है। जैसे हम बिजली घर की तार से अपनी बिजली को जोड़ना चाहते हैं, अपनी मकान की तार को, तो कई बार मीटर में मीटर का फ्यूज हो जाता है, उड़ जाता है ना, तो करंट नहीं पास होता, कनेक्शन कट जाता है। तो तांबे की तार से ही तांबे को जोड़ना होता है तभी करंट पास होगा, तो रबर को हटाना पड़ता है ना, अगर रबर को हटाया नहीं, ऐसे ही तार फ्यूज के साथ जोड़ दिया तो करंट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार आत्मा की स्थिति पहला कदम है राजयोग के लिए। फिर दूसरा है, उस परमात्मा की भी सही पहचान चाहिए। जब तक परमात्मा की सही पहचान नहीं है तब तक मन किसमें लगाएं यही पता नहीं पड़ता है। फिर चाहे हमने कितने भी, कोई ने कहा इनको याद करो, कोई ने कहा इनको याद करो, कोई ने कहा इनको याद करो, लेकिन जिनको भी हम याद करते हैं उनके आगे भी कोई है, उनसे भी ऊंचा कोई है, तो हम उस सर्वोच्च को याद करें जिनसे ऊंचा कोई नहीं, जो आपको बताया गया, जिसका कोई माता पिता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई रक्षक नहीं, जो सर्वोच्च सर्वोपरि स्वयं भू सर्व का मात पिता शिक्षक सतगुरु रक्षक है, उनसे मन की तार जुड़े। अब कई कहते बहन जी उस तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, कोई राष्ट्रपति तक पहुंचना चाहे ऐसे ही थोड़ी पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, कितनी फॉर्मेलिटीज होती है राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए। चलो राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच गए, पर राष्ट्रपति की ऑफिस में जाकर उनसे मिलने के लिए वो ADC और PA और ये न जाने कितने बाप रे बातें होती है, उनकी फॉर्मेलिटीज, अपॉइंटमेंट टाइम होता है, ये होता है, तो इतना सहज तो नहीं है राष्ट्रपति से मिलना। परंतु अगर राष्ट्रपति, अभी जैसे भारत की राष्ट्रपति महिला है, उनका तो बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, पोतरे हैं, दोतरे हैं, ना बहुत कुछ है, बड़ा परिवार, और सब वहीं रहते हैं, उनके ही घर में रहते हैं। मान लो अब पोतरे को इच्छा हुई कि मैं अपने दादी से मिलूं, तो उसको कोई रोक सकता है? रोक सकता है? क्यों? इतनी फॉर्मेलिटी से जाना पड़ेगा अपनी दादी से मिलने के लिए, या बच्चे को अपनी माँ से मिलना है, पिता से मिलना है, तो इतनी सारी बातों से थोड़ी गुजरना पड़ेगा। हाँ, प्रजा को कठिनाई होगी कि राष्ट्रपति के पास कैसे जाएं, हम अंदर जाने ही नहीं देंगे। पर जिनकी वो अपनी माँ है या अपना पिता है, उनको क्या, उनको कौन रोकेगा। इसी प्रकार परमात्मा के साथ तो हमारे सर्व संबंध है, हम ये क्यों भूल गए हैं। अन्य से तो फिर भी संबंध इतने नहीं है, लेकिन परमात्मा को ही हमने हर जन्म में पुकारा है, किसी देहधारी को नहीं पुकारा है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, ये किसी देहधारी को नहीं कहा है। कोई भी देहधारी, चाहे देवात्मा ही क्यों ना हो, उनके साथ सर्व संबंध नहीं हो सकते हैं। एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के सर्व संबंध नहीं हो सकते हैं। माँ होगी तो माँ ही केवल होगी, पिता भी नहीं बन सकती हो। पिता होगा और माँ समझो नहीं है किसी को, तो पिता चाहे कितनी भी कोशिश करे, माँ का वो पार्ट नहीं बजा सकता है जो माँ का होता है। इसलिए माँ माँ ही रहेगी, पिता पिता ही रहेगा, संबंध अलग अलग है। लेकिन परमात्मा को जब हम याद करते हैं, क्या कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, अर्थात दोनों ही एक के साथ संबंध है। फिर वो हमारा शिक्षक भी है, वो सतगुरु भी है, वो साजन भी है। जो संबंध हम चाहें ईश्वर से जोड़ सकते हैं, तो कोई देहधारी व्यक्ति थोड़ी होगा। जो लौकिक में पिता होता है वो पति थोड़ी होता है क्या। बेटी है वो पत्नी थोड़ी होगी, संबंध अलग है, व्यवहार भी अलग है, दृष्टि भी अलग है। तो परमात्मा के साथ आत्मा का अनादि अविनाशी संबंध, और वो भी सर्व संबंध है, एक जन्म का संबंध भी नहीं और एक संबंध भी नहीं, सर्व संबंध और सर्व जन्मों में संबंध। तो उनसे संबंध फिर से जोड़ना मुश्किल क्यों होना चाहिए। परंतु कहीं ये संबंध टूट गया है, इसीलिए अनुभूति नहीं होती। उस संबंध को, अनादि अविनाशी संबंध को जो कायम है, पर कहीं फ्यूज उड़ गया, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं बिजली जल रही है, सब कुछ अचानक अंधेरा हो जाता है, तो भाई क्या कारण है, दूसरे हॉल में तो बिजली जल रही है, यहाँ क्यों नहीं जल रही है। तो इसका जरा मीटर तो देखो, कहीं फ्यूज ना हो गया हो, है ना। तो फ्यूज को ठीक करना है, सब कनेक्शन सब ठीक है, पर फ्यूज उड़ गया है। तो आत्मा को शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, ये सब क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन कट गया है। जो आत्मा का अनादि अविनाशी स्वरूप है, उसका अनुभव हमें हर वक्त होना चाहिए। आज हम भिखारी बन गए हैं, इसीलिए मांगते हैं, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, प्रार्थना करते हैं, पर भिखारी की तरह। इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, गाते हैं ना। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। हे भगवान, तुम तो सागर हो पर एक बूंद के हम प्यासी है। भगवान कहते बूंद के प्यासी क्यों बनते हो, पूरा सागर पी जाओ ना तो भी वो सागर कम नहीं होने वाला है, पर हम बूंदी के ही प्यासी हैं। सागर के किनारे कोई जाकर कहे, हे सागर तुम तो सागर हो पर मुझे एक बूंदी दे दो, कहेगा कितना मूर्ख है, पियो ना, पूरा खुला है सागर, मना है क्या। सूरज को कहो, हे सूरज एक किरण ही बस है, तुम भले सूरज हो, सूरज कहेगा पूरा लो ना तो भी मैं अखुट हूं, मैं खुटने वाला नहीं हूं। तो परमात्मा तो दाता है, जिसके लिए कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। वो दाता है, देने वाला, जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, देने वाला थकता नहीं, लेने वाले थक सकते हैं, इतना दाता है वो। लेकिन उसकी शर्त क्या है, देता जरूर है पर शर्त क्या है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। एक भिखारी भीख मांगेगा एक करोड़पति के सामने जाकर, कहेगा भा साहब कुछ दो, तो एक करोड़ थोड़ी दे देगा वो करोड़पति, क्या देगा, चलो एक रुपया दे देगा। पर बच्चा अगर बाप से लेना चाहता है तो भिखारी की तरह थोड़ी मांगेगा, कहेगा पिताजी मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए ऐसे कहेगा ना, पिता तो करोड़पति है, लाख भी उसके लिए कुछ नहीं है, अधिकार रखेगा और भिखारी भीख मांगेगा। तो हम भगवान के बच्चे हैं, अधिकारी हैं या भिखारी हैं, क्या है, क्या है, भिखारी बन गए हैं। क्यों बन गए हैं भिखारी, क्योंकि खुद से भी दूर चले गए, परमात्मा से भी दूर चले गए, इस संसार में हम क्यों आए ये भी भूल गए। दुनिया में ऐसे ही हम नहीं आए हैं, कुछ लक्षित भगवान ने हमें दिए हैं और इस संसार में भेजा है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने लिए भेजते हैं, तो ऐसे थोड़ी केवल घूमने के लिए भेजते हैं, लक्ष्य है कि पढ़ना है। कितना खर्चा करते हैं बच्चे के ऊपर, विदेश में पढ़ना कोई सहज काम थोड़ी है, कितना खर्चा लगता है, तो अपने पेट को भी पट्टी बांध के विदेश में पढ़ने लिए भेजते हैं बच्चों को, कि वहां अच्छा पढ़ लिख करके आएगा, थोड़ा नाम कमाएगा, हाँ अच्छा नाम होगा तो पिता बच्चे का तो नाम होगा पर पिता का भी होगा, क्यों नहीं। सब त्याग करके बच्चे को भेजते हैं। भारत सरकार भी अपने विद्यार्थियों को, जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे करके विदेश भेजती है कि वहां पढ़ाई करो, सरकार पैसा देती है तो लक्ष्य तो होगा ना, क्यों देती है, ताकि देश का नाम रोशन करे। और अगर कोई भारत से गया हुआ विदेश में देश का नाम रोशन करता है तो कितना नाम होता है उसका, कितना सारे देश में वाह वाह हो जाती है। पर जाके नाम बदनाम करके आए तो आते ही जेल में डाल देते हैं और क्या करेंगे। तो भगवान ने हम आत्माओं को क्यों इस सृष्टि पर भेजा, 3 लक्ष्य देकर के भेजा, वो भी हम भूल गए। इसीलिए कहा ना, कौन है, कहां से आए, क्यों आए, सब भूल गए, इस भूल भुलैये में फंस गए। तो 3 लक्ष्य क्या दिए, कि हे आत्मा संसार रंगमंच पर जाकर के ड्रामा करो, एक्टिंग करो। मंच पर एक्टर क्यों आता है, एक्टिंग करने लिए। आत्मा के अंदर कर्म करने की कला है, जैसे एक्टर में एक्टिंग करने की कला होती है तो उसको मंच चाहिए, तो आत्मा में कर्म करने की कला है, कर्म करना भी एक कला है। जैसे चलना चलना है, परंतु रस्सी पर चलना एक कला है, कोई चलता है पर तो भी गिर जाता है, और दूसरा है रस्सी पर चलता है तो भी गिरता नहीं है, है ना, कला है ना उसके अंदर, चलना दोनों में है, रस्सी पर चलो या धरती पर चलो। पर रस्सी पर चलने के लिए, हाँ देखने के लिए कि कोई रस्सी पर चलता, उसके लिए टिकट होती है सर्कस में या कहाँ, नहीं वो तो पैसा ले दे करके वो देखते ही रस्सी पर कैसे चलता है, तो कला है ना ये। तो इसी प्रकार इस संसार में आना भी एक कला है, और उसमें कर्म करना ये आत्मा के अंदर संस्कार निहित है, तो इसलिए आना है इस संसार में। कोई कहते कर्म क्यों करें, हम कहते अच्छा मत करो, बैठ जाओ समझो, कोई कहे कुछ नहीं करना है बैठ जाओ, बैठ भी सकेंगे। मान लो कई बार होता है ना, एक्सीडेंट होता है या गिर जाते, हड्डी टूट जाती, फ्रैक्चर हो जाता है पैर का, डॉक्टर कहेगा अभी 1.5 महीना हिलना नहीं। बाप रे, 1.5 महीना बिस्तर पर कैसे सो सकेंगे, क्या करेंगे, रोज डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर ये प्लास्टर कब निकालेंगे, हा? क्यों पूछते हैं, सो जाओ ना, मजा है, रोज सोते रहो, खाना पीना सब मिलता है, लेकिन नहीं बैठ नहीं सकते। कर्म करने की आत्मा के अंदर संस्कार है, तो वो संस्कार आत्मा के अंदर जो कर्म करने की, वो कहां व्यक्त करेगी, रंगमंच पर उसके लिए चोला चाहिए, ये शरीर चाहिए, तो पहला लक्ष्य था इस संसार में आकर कर्म करना, दूसरा लक्ष्य था क्यों आए इस संसार में, कर्म में क्या कर रहे, उसमें क्या लक्ष्य रखे। केवल कर्म करना ही लक्ष्य नहीं है, एक्टिंग करना ही लक्ष्य नहीं है, पर एक्टिंग करते समय लक्ष्य क्या होता है, एंटरटेन करना दूसरों को, हाँ उसमें मनोरंजन करना, उसमें कोई शिक्षा देना कुछ, यानी जीवन में कुछ प्राप्ति हो, ये कर्म में निहित हो कि ये देना है, देने की भावना। इसी प्रकार हम इस संसार में क्यों आए, आत्मा कर्म के द्वारा शांति, प्रेम, सुख, खुशी ये बांटने के लिए दुनिया में आए। क्योंकि इसके पीछे राज क्या है कि अगर ये गुण अपने मन से, वचन से, कर्म से औरों को बांटते हैं तो ये गुण बढ़ते हैं। स्थूल चीज बांटने से कम होती है, मेरे जेब में 10 रुपए होंगे, मैं 2 रुपया किसी को दूंगी तो 8 ही बचेंगे, 12 नहीं हो जाएंगे, कोई बढ़ नहीं जाएंगे, निकालने से कम ही होंगे। पर शांति हम किसी को बांटेंगे, प्रेम के बोल बोलेंगे, उसको खुशी देंगे तो हमारी खुशी, हमारी अंदर की शांति या प्रेम कम नहीं होगा, वो भी बढ़ेगा। यही तो अंतर है। तो इस दुनिया में क्यों आए, ये गुण बांटने के लिए। और तीसरा लक्ष्य क्या था, उस ईश्वर का नाम रोशन करने के लिए जिसकी ये रचना है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। रचना को देख करके रचयिता की याद आती है। तो परमात्मा की ये सुंदर दुनिया रचना है, परंतु इस सुंदर रचना को किसने बिगाड़ा, भगवान ने तो बड़ी सुंदर रचना हमें दी, बिगाड़ा हमने अपने कर्मों से। तो सुधारना किसको है, भगवान को या हमको, हाँ बिगाड़ा तो हमने, तो सुधारे वो, सुधारना भी तो हमें ही है ना। तो कैसे सुधारेंगे, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो आत्माओं की आज शक्ति क्षीण हो गई है, क्योंकि खुद को भूला, ईश्वर को भूला, इस संसार में आने का लक्ष्य भूला। तो भगवान आकर के फिर से याद दिलाते हैं कि हे आत्माएं, पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने सच्चे पिता को, पहचानो अपने घर को, पहचानो जीवन के लक्ष्य को। और जैसे ये पहचान मिलती है, एक जागृति आती है। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो, बहुत ताकत वाला हो, लेकिन सोया हुआ है तो उसकी शक्ति भी सोई हुई है। और जैसे जागता है तो शक्ति भी जागती है। तो आत्मा भी अज्ञान के नींद में सोती है जरूर, पर जगाए कौन, जो सदा जागती ज्योति है, जो जिसको कभी अज्ञान नहीं आता, वो तो ज्ञान का सागर है। तो वही आकर के हम आत्माओं को जगाते हैं और अपनी पहचान देकर अपने साथ योग लगाने की शिक्षा देते हैं। और ये शिक्षा अपनी पहचान देकर परमात्मा ने ही दी है। आप कहेंगे कैसे दी, वो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे दी, लेकिन क्या दी वो आपको कल बताया। अब जब आत्मा की पहचान मिल गई, परमात्मा की पहचान मिल गई, अब दोनों का मिलन कैसे हो, उसके लिए आधार क्या है, विधि क्या है। क्योंकि कोई भी चीज बनाते हैं, करते हैं, कुछ आधार होता है। जैसे मकान बनाते हैं, बेसिस चाहिए ना, जितना ऊंचा मकान, जितना ऊंचा जाएगा उतना ही नीचे उसका फाउंडेशन चाहिए। वो फाउंडेशन तो गुप्त होता है, आधार गुप्त होता है, पता नहीं चलता है। पेड़ जितना ऊंचा होगा उसकी जड़ें उतनी नीचे मजबूत होगी, नहीं तो इतना बड़ा पेड़ खड़ा कैसे होगा, जड़ें इतनी मजबूत चाहिए। तो जितना ऊपर उतना ही उनसे भी ज्यादा नीचे चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। तो राजयोग का भी कुछ आधार है, कुछ विधि है। क्योंकि मन वो ऊर्जा है जो दोनों का मिलन कराती है। अब ये मन ईश्वर में कैसे जाए, उसके लिए आज तक जो हमने आधार अपनाए थे, जो भी अपनाते हैं हम, वो सब स्थूल आधार है। जैसे भाई किसी को मंत्र मिला, अब उनको कहा जाएगा ये मंत्र जाप आप करना 1,00,000 बार, और फिर माला भी शायद दे दी, चलो ये माला भी फेरते रहना, चलो सामने कोई मूर्ति भी उनको दे दी कि ये मूर्ति का ध्यान करना। तो होता क्या है, हमको जो आधार मिला वो स्थूल मिला, मंत्र मिला जो मुख से जपना है, माला मिली जो जिसके मणके उंगलियों से फेरने हैं, और मूर्ति मिली सामने जिसके आगे आंखों को देखना है, जिसको ध्यान करना है। अब होता क्या है कि मंत्र तो मुख पर रह जाता है, माला हाथ में रह जाती है, आंखों के सामने मूर्ति होती है, पर ये बेलगा मन भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि उंगलियों को तो काम दिया, आंखों को भी काम दिया, होंठ को भी काम दिया जपने के लिए, पर मन को तो काम दिया ही नहीं। मन को दिया क्या काम? इसीलिए मन क्योंकि सूक्ष्म है तो उसको आधार भी सूक्ष्म चाहिए। अब सूक्ष्म आधार क्या होते हैं? आप देखेंगे दुनिया में कितनी घटनाएं रोज घटती है, कितनी बातें होती है, कितना बड़ा संसार है, लेकिन आपका मन सब में थोड़ी जाएगा, जाएगा? कितने करोड़ों इंसान है दुनिया में, सबको याद करते रहते हैं क्या हम? न व्यक्तियों को याद करते हैं, न घटनाओं को याद करते हैं, कुछ भी नहीं। अब यहाँ आप 2 दिन से आए हो, सब दुनिया भूली हुई है या यहाँ भी याद है? धंधा कैसे चल रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये नहीं, ठीक है, सब ठीक होगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज। भाई कुछ सूचना घर से नहीं है, ठीक ही होगा, हम चिंता नहीं करते, जब जाएंगे तब जाके देखेंगे, यहाँ का तो लाभ ले। परंतु मान लो अचानक घर से टेलीफोन आ जाता है कि फलाना बड़ा सीरियस है, फलानी ये बात हो गई, तुरंत जाएंगे, अभी जाना है, नहीं घर से बुलावा है, जाना है। जब तक समाचार नहीं था तो आराम से बैठे। तो पहला कदम आधार क्या हुआ, क्यों मन गया? क्योंकि सूचना आई। इसीलिए मन के कहीं भी जाने के लिए पहला आधार होता है कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी। बिना जानकारी के आप किसको याद करेंगे? कितने करोड़ों इंसान हैं। ट्रेन में बैठते हैं तो क्या होता है, अभी फ्री बैठे हैं तो जो मेरे दूसरे सीट पर होगा मेरे साथ, उनसे बात करना शुरू करते, अकेले हैं वो भी अकेला है, मान लो आप कौन है, कहाँ से आए, क्या करते हैं, कितने बाल बच्चे हैं, ना पूछते रहते ना। तो जैसे ही पहला इंट्रोडक्शन क्या होता है, कदम, उनसे बातचीत करने के लिए उनका परिचय लेते हैं। तो पहला कदम मन के कहीं भी जाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? परिचय। तो आत्मा और परमात्मा का परिचय, ये पहला कदम है मन को ईश्वर में लगाने के लिए। अब परिचय मिल गया आपको, फिर दूसरा आधार क्या है? जैसे परिचय लेते लेते पता चल जाता है कि ये तो मेरा कोई संबंधी है या कोई समानता है। कई बार होता है ना, एक ही गांव के व्यक्ति मिल जाते हैं, बचपन में स्कूल में पढ़े हो एक साथ मिल जाते हैं, इंजीनियर हैं आपस में मिल जाते हैं, डॉक्टर आपस में मिल जाते हैं, बच्चे आपस में मिल जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ समानता होती है ना, तो मिलन होता है, आकर्षण होता है। भाषा एक है तो भी मिल जाते हैं। तो स्थूल रूप में हम देखते हैं ये संबंध कब जुड़ता है, जब कोई समानता होती है। जैसे किसी कुमार और कुमारी कि सगाई करनी है, शादी करनी है, तो माता पिता संबंध के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं, दोनों की जन्म पत्री ले जाते हैं, कहते हैं भाई जरा देखो इनका योग है, तो योग होने लिए फिर क्या करता है ज्योतिषी, उनकी जन्म पत्री में जो कुंडली होती है ना वो मिलाता है, और मिलाते समय क्या देखता है कि ग्रह नक्षत्र ये दिशा या सॉरी दशा और वो राशि ये सब इसमें मैचिंग है। तो अगर ये ग्रह संस्कार दशा राशि ये सब मिलते हैं मैच होते हैं मिक्स होते हैं तो कहेंगे योग है, और अगर नहीं मिलते हैं तो क्या कहते हैं योग नहीं है। तो योग होने के लिए दूसरा आधार चाहिए, कोई संबंध होना चाहिए तभी तो मिल सकेंगे भाई, कम से कम कुछ तो समानता चाहिए ना। अब राजयोग हमें बताता है कि समानता क्या है, अब तक हमने ये समानता का सोचा ही नहीं था, या तो इतना अभिमान हम दुनिया की उपलब्धियों का जताते हैं, मेरे जैसा कोई सेठ नहीं साहूकार नहीं बुद्धिमान नहीं सुंदर नहीं, मैं जैसे कल दादी ने कहा ना मैं कहते रहते हैं, तो मैं क्या ही रट हम लगाते रहते अभिमान वश, तो ईश्वर से वो हमें दूर कर देता है, क्योंकि भगवान के द्वार पर जाएंगे तो भगवान ये सब नहीं पूछने वाला है ना, इसका हिसाब लेगा कितने बच्चे पैदा किए कितने मकान बनाए कितने दुकान बनाए कितना धन इकट्ठा किया कितनी जमीन जायदाद आपके पास है, ये हिसाब भगवान के पास नहीं चलेगा, वो तो यहीं रह जाएगा, तिजोरी की चाबी भी नहीं चलेगी, धन तो छोड़ो चाबी भी नहीं चलेगी भाई, चलो वहां जाकर के चाबी लेके जाएंगे तो कभी आकर के खोलेंगे वो भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए जबकि ये स्थूल चीजें जिनका हम घमंड करते हैं वो चलने वाली नहीं है, तो फिर हम ये इसमें क्यों फंसे हुए हैं, यही सब कुछ नहीं है, और फिर हम इस नशे से ईश्वर को याद करते हैं तो मन कहाँ जाएगा, उन्हीं में जाएगा, ईश्वर में कहाँ जाएगा, डर ही होगा कि पता नहीं चोर लूट न जाए, कहीं रिश्तेदार हमारे से ले न ले, कहीं आग न जला दे, कहीं सरकार न ले ले, है ना, यही चिंता लगी रहती है ना, क्योंकि मेरा मेरा है। पर जैसे ही ये सोचा मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा तो इस संसार में कुछ नहीं लाई, इसलिए हम बता रहे थे कि जैसे हमको एसटीडी कॉल करना है तो एसटीडी कॉल करने के लिए लोकल कॉल्स का इंटरफियरेंस ना हो, उसके लिए पहला डिजिट जो लगाते ना टेलीफोन पर वो है जीरो, तो जीरो जैसे लगाया लोकल लाइन कट गई, तो आत्मा का जीरो लगाया ये सब लोकल लाइन कट गई, जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं वो सब यहीं की यहीं रह जानी है, मैं तो केवल एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। तो वस्तुएं सब यहां ही रहनी है, इसलिए वो आत्मा के साथ नहीं जानी है, वो आत्मा सोचा ये मन इनसे निहट जाएगा। परंतु दूसरा कदम क्या है, कई बार क्या होता है कि वस्तुएं याद नहीं आती, व्यक्ति याद आते हैं, वो मरते समय भी किसी को किसी से बहुत मोह होता है ना, कोई हिसाब किताब होता है, तो शरीर ही नहीं छूटता है जब तक वो व्यक्ति उनके सामने नहीं आता है, जो अमेरिका में है कहाँ है भाई उनको बुलाओ तब तक इनके प्राण छूटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत मोह होता है, और जब सामने वो आता है तब वो प्राण छोड़ता है, क्योंकि मोह बहुत सताता था। तो वस्तु याद नहीं आती पर व्यक्ति याद आते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। तो दूसरा योग लगाओ, दूसरा जीरो, जैसे एसटीडी नहीं भारत में नहीं विदेश में करना है हमें, तो विदेश में अगर नंबर करना है फोन करना है तो क्या करते हैं, दूसरा जीरो भी लगाते हैं ना, आईएसडी कहते हैं उसे, तो दूसरा जीरो भी लगाया तो क्या होता है, जो भारत की लाइनें है ना वो सब कट जाती है, और विदेश का नंबर कोड नंबर जो होता है उनसे जोड़ना होता है। तो अब विदेश में जोड़ना है तो दूसरा जीरो लगाओ। तो यानी दूसरा जीरो का यहां मतलब है, दूसरा जीरो है परमात्मा। परमात्मा भी बिंदु है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अजन्मा कर्ता भोक्ता, ये सब हम समझ गए कि वो परमात्मा कौन है। वो सदा शिव है, कल्याणकारी है, निराकार है, सर्व गुणों का भंडार है, और उसके साथ ही मुझ आत्मा के सब संबंध हैं। और ये जैसे ही मन में आया, देहधारी जो भी हैं, ये सब आत्माएं हैं, ये भी उस परमात्मा की संतान हैं, ये समझ में आ गया तो मन परमात्मा में लगना शुरू हो जाता है। अब तीसरी बात, कई बार मनुष्य भी याद नहीं आते हैं ना, मरने की जब घड़ी आती है ना, मनुष्य भी याद नहीं आते हैं, बिल्कुल वैराग आ जाता है, बिल्कुल दुनिया से, वस्तुएं भी याद नहीं आती, व्यक्ति भी याद नहीं आते, एक तीसरी चीज याद आती है पता है, और वो याद करते करते रोते हैं, रोते हैं, हमने तो बहुत देखा, इतने दुख के आंसू बहाते हैं, उनको कितना भी कभी भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, वो भगवान नहीं याद आता है। तीसरी चीज क्या याद आती है, मेरे साथ ऐसे हुआ था, मुझे इतना दुख मिला था, मेरा सब कुछ लूट लिया था, मुझे इतना परेशान किया था, मुझे दुखी किया था। अरे भाई वो तो बीत गई बात, पूरा हो गया, अभी तो भगवान को याद करो जिसके पास जाना है। लेकिन नहीं, वो याद आके आंखों से आंसू आते रहते, दुखी होते अंतिम घड़ियों में भी। तो ये भी क्या कहेंगे, कितना बड़ा ज्ञान। तो गीता का सार याद आता ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन हम बीती बातों को याद करते दुखी होते हैं, जिनसे अभी कोई लेना देना नहीं है, ना वो व्यक्ति जिंदा है, ना वो घटनाएं वापस आनी है, पर वो ही याद करते रहते हैं और मन को दुखी करते रहते हैं। तो राजयोग कहता है तीसरा योग भी लगाओ, इस संसार से ऊपर चले जाओ, ये संसार भी जीरो है ना, धरती क्या है, गोल है, ये भी जीरो, ये संसार एक ड्रामा है, इसको भूलो, बिंदु लगाओ, जो हुआ अच्छा हुआ ड्रामा। और तीसरा जीरो लगाते ही मन कहाँ चला जाएगा, परम धाम में, उस बेहद के महतत्व में जो आत्माओं का घर है। तो तीसरा जीरो लगाएंगे तो परम धाम से कनेक्शन हो जाएगा, दूसरा जीरो लगाएंगे तो दुनिया के किसी देश से कनेक्शन जोड़ेंगे उसका कोड नंबर। अब परमात्मा से परम धाम में कनेक्शन जोड़ना है तो क्या करो, तीसरा जीरो भी लगा दो और फिर एक, ये भगवान का कोड नंबर है 300001 000001, ये भगवान का कोड नंबर है अगर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है तो। तो मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, परम आत्मा की संतान जो ज्योति बिंदु है, और परम धाम का मैं निवासी हूं, और मैं आत्मा, मेरे सर्व संबंध उस एक के साथ ही है। तो पहला आधार मन का कहीं जाने के लिए है परिचय, फिर दूसरा आधार है संबंध, और संबंध जो टूट गया है उसको जोड़ने के लिए विधि क्या है, विधि है समानता। आत्मा और परमात्मा के बीच में बहुत समानता है, लेकिन कई इस समानता का अर्थ न समझने के कारण क्या कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा नहीं, नाम में अंतर है, आत्मा और परमात्मा है, परम प्लस आत्मा, वो अधिक परम अधिक आत्मा, यानी वो भी एक आत्मा है, लेकिन ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्यों में, अधिकार में परम सर्वोच्च है, पर है वो भी आत्मा। तो समानता क्या है, रूप की समानता। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक जैसा ही स्वरूप है। और जहां समानता होती है वहां आकर्षण होता है। अगर मुझे कोई कह दे कि बहन जी आप जैसी शक्ल वाला फलानी वाली एक बहन है, हाँ हमारे वहां बिल्डिंग में रहते बिल्कुल आप जैसी शक्ल है, मैं कहूंगी अच्छा मैं मिलना चाहूंगी उससे, हाँ हम शक्ल से मिलना चाहेंगे ना। तो आत्मा और परमात्मा की शक्ल एक जैसी है। अगर आत्मा का साक्षात्कार होता है परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो दोनों का साक्षात्कार किस रूप में होगा? ज्योति रूप में होगा। तो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में अंतर नहीं है, एक तो एक समानता है स्वरूप की समानता, दूसरी समानता है गुणों की समानता। जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है। इसीलिए आत्मा के लिए क्या कह देते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसे मानते हैं ना। अब अंश का अर्थ गलत ले लिया है। अंश का मतलब ये नहीं है टुकड़ा, जैसे ये लकड़ी है, अब इसका अंश निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ तो इस लकड़ी का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उस रूप से आत्मा नहीं है जो अंश के रूप में निकलती जाए निकलती जाए निकलती जाती। इतनी सब आत्माएं संसार में हैं, 600-700 करोड़ दुनिया की आबादी है आत्माओं की, तो क्या परमात्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अंश निकलते गए निकलते गए? नहीं, वो तो परिपूर्ण है। तो अंश का मतलब क्या है कि जो परमात्मा की गुणवत्ता है आत्मा की वही गुणवत्ता है अंश रूप में। यानी परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, तो आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो सागर है, आत्मा स्वरूप है। इसीलिए आत्मा के लिए क्या कहते हैं, आत्मा एक बुदबुदा है, एक बूंद है, वो सागर में मिल जाती है। हम कहते हैं बूंद और सागर का की जो कंपैरिजन है वो इस रूप में नहीं है कि बूंद सागर में मिल गई, क्योंकि आत्मा का तो विनाश कभी नहीं होता है, वो बूंद का तो विनाश हो जाता है। आत्मा बूंद अगर सागर में चली गई तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है उस रूप में। आत्मा का अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता है, ना आत्मा पैदा होती है ना वो खत्म होता है, उसका अस्तित्व सदा से ही है। आत्मा न जलती है न कटती है न सूखती है न डूबती है न गीली होती है, तो उसका अस्तित्व खत्म कैसे होगा? इसीलिए आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, परंतु जो परमात्मा के गुण है उन गुणों का भी मैं स्वरूप हूं। मेरा स्वाभाविक गुण वही है जो ईश्वर के गुण है। तो गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, बाकी संख्या में अंतर जरूर है, क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में अंतर नहीं है। इसको अगर उस रूप से समझें तो इसीलिए कह दिया अंश। तो एक जैसे ही गुण है, अब वो शांति का सागर है, मैं तो शांत स्वरूप हूं, तो शांत स्वरूप आत्मा शांति की भीख मांगे, जबकि मेरा ही वो स्वाभाविक गुण है। अपने स्वाभाविक गुण के लिए भीख मांगू या मैं अधिकारी हूं, है? क्या कहेंगे? और अगर भिखारी बन के मैं भगवान से शांति मांगती हूं तो शांति कभी नहीं अनुभव होगी, क्योंकि ये आत्मा के अंदर ही निहित है। ये शांति को हमको बाहर से थोड़ी लेनी है, या भगवान हमको ऊपर से थोड़ी फेंकेगा, हमको देगा लो शांति, या हमें शांति ऊपर से मिलेगी और अगर मिलेगी और पता चलेगा मिल गई, ये तो मन की स्थिति है। इसीलिए शांति हमसे कितनी दूर है, एक सेकंड की सोच की दूरी पर है। इसलिए दादी जी ने कल बताया ना, ओम शांति का पाठ याद रखो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति धाम की वासी हूं, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। इसीलिए शांति पाठ के अंत में क्या कहते हैं, ओम शांति शांति शांति। तीन बार शांति शब्द का प्रयोग होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है चलो एक ही बार का ओम शांति। परंतु तीन बार का मतलब क्या है? आत्मा का अपना स्वभाव शांति, आत्मा का जो घर है वो शांति का घर है, आत्मा का जो पिता है वो शांति का सागर है। तो जिसका स्वयं का स्वभाव शांति, घर शांति का धाम, पिता शांति का सागर, वो शांति का भिखारी बन के मांगे शांति, उसको क्या कहेंगे? अज्ञान। इसीलिए राजयोग से ही अज्ञान खत्म होता है। परमात्मा हमें वो ज्ञान देते हैं, हे आत्माएं पहचानो अपने स्वरूप को, पहचानो अपने पिता को, पहचानो अपने घर को। तो ये चिंतन जो हम मन को देते हैं बुद्धि के बल से, ये राजयोग का पहला कदम है, जिससे आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर बैंड वेवलेंथ का पता चला और रेडियो की सुई हमने वहां रखी, सेट की, घुमाई और एकदम रेडियो रिसीवर पर आवाज उस स्टेशन की आने लगेगी। तो मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की संतान, शांत स्वरूप, शांति के सागर परमात्मा की संतान, शांति धाम का वासी। जैसे ये संकल्प किया, शांति एक सेकंड में अनुभव होने लगेगी। तो दूसरा आधार है संबंध। अब तक ये संबंध नहीं था, इसीलिए शांति के भिखारी थे। संबंध कैसे नहीं था? क्योंकि कोई समानता ही नहीं थी। हम सोचते परमात्मा तो निर्गुण निरंजन निराकार, नाम नहीं रूप नहीं गुण नहीं कुछ नहीं, ये नहीं ये नहीं, और मैं तो फलाना नाम फलाना रूप धाम धर्म जाति भाषा इसी में फंसे हुए हैं, तो योग कैसे लगेगा? फिर हमने सोचा परमात्मा वो तो बहुत पावन है, बहुत शुद्ध, और मैं अशुद्ध, मैं पापी, कपटी, गंदा बंदा, मिट्टी, चरणों की धूल, मूरख, निर्बल, न जाने क्या क्या अपने लिए हम कहते हैं ईश्वर के आगे, इतनी हीनता जताते हैं ईश्वर के आगे, और दुनिया के आगे तो बहुत बढ़ चढ़ करके अपनी तारीफ करते हैं, और भगवान के आगे हीनता जताते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम एंड अज्ञान है। इसलिए राजयोग कहता है ये संबंध जुड़ा ही नहीं, वो इतना पावन और मैं इतना पतित। फिर कह दिया त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, मात पिता इतना पावन और बच्चे इतने पतित। किसी का पिता अगर बहुत खानदानी व्यक्ति, बड़ा रॉयल व्यक्ति हो, बड़ा अच्छा नाम है उसका समाज में, बड़ा समाज सेवी व्यक्ति है, बहुत सेवा करता है और बहुत उसका मान है, पर उसका बेटा नालायक हो, शराबी हो, कबाबी हो, हाँ जेल में भी गया हो, चोरी भी की हो, और पिता तो करोड़पति है पर बेटा चोर है और पकड़ा गया, तो केवल बच्चे का ही नाम बदनाम होता है या पिता का भी होता है? क्या कहेंगे? पिता का भी होता है ना। किसका बेटा? अरे फलाना क्या बेटा, बाप रे इसका बेटा, बाप तो देखो कैसा और बेटा कैसा है, लोग आश्चर्य खाएंगे। तो परमात्मा कितना ऊंच और हम उनके बच्चे और हम कैसे? तो राजयोग के द्वारा हम उस अंतर को मिटाते हैं, कैसे? अपने असली स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो गुणवत्ता समान है, स्वरूप एक जैसा है, धाम एक ही है, तो संबंध जुड़ गया। अब धाम के बारे में भी कितने मंतव्य, भगवान का ऊपर है, अब ऊपर कहाँ, सातवें आसमान में या दिल में है, सब जगह है। अरे सब जगह क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। अब हमें पता चला कि हम भी इस दुनिया के रहने वाले नहीं है, तो परमात्मा तो है ही मुसाफिर, वो तो आता है संसार में जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ये उनका वायदा है, और अधर्म का नाश उसको करना पड़ता है, नहीं तो कहां से आए, वो उसका धाम है। और वो आत्माओं का भी धाम है, हमारा भी वही घर है। इसीलिए हम भगवान को कहते हैं, भगवान बस उठा लो, इस संसार से नहीं जीना है, मुझे मरना है, मुझे मरना। दुखी होके कहते हैं, सुखी होके कोई नहीं कहेगा मुझे मरना है, दुखी होके ही कहते हैं हे भगवान उठा लो, या भगवान को ही दोष देते हैं, हे भगवान तुमने ये दुनिया क्यों बनाई, इतना दुख हमें क्यों दिया, उठा लो बस नहीं जीना इस संसार में। अब राजयोग कहते से दुखी होके भगवान को मत पुकारो, उसकी बजाय मन और बुद्धि से चले जाओ उस घर में। अपने घर में जाने में देर लगनी है, चाहिए क्या, अभी यहां बैठे आप अहमदाबाद से आए हो तो अहमदाबाद में जो आपका घर है वहां मन से जाने में आपको कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, सोचा और पहुंच गए। तो उस परम धाम में जाने में कितनी देर लगनी चाहिए, एक सेकेंड, सोचा और मन की आंख उस घर में पहुंच जाए, उसको देखे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में परमात्मा के सामने विराजमान हूं, और रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु, मैं आत्मा उनकी संतान, उनके सम्मुख उनके सब गुणों को अपने अंदर भर रही हूं। एक सेकेंड में संबंध जुड़ गया, वो हमारे माता पिता शिक्षक सतगुरु सब संबंध है। तो दूसरा आधार है संबंध, तीसरा आधार है स्नेह। परमात्मा से इतना ही स्नेह हो, इतना प्रेम हो, जो केवल याद करे नहीं, याद आए नहीं, जिनसे स्नेह होता है ना, प्यार होता है, उसकी याद में तो खो जाते हैं, लॉस्ट इन लव। प्रेम ऐसी चीज है, तो प्रेम ये सूक्ष्म डोर है जो मन को ईश्वर की ओर इतना तुरंत ले जाती है, जो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आज ईश्वर से प्रेम नहीं है, प्रेम की बजाय क्या हो गया है, स्वार्थ आ गया है। अगर भगवान ने कुछ दिया तो भगवान तुम बहुत अच्छे हो, और नहीं दिया तो भगवान तेरे जैसा बुरा कोई नहीं। तो भगवान से मेरा संबंध केवल स्वार्थ का बन गया है। अगर उनसे मिलता रहे तो भगवान बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो भगवान बहुत बुरा है। बहुत उदाहरण है दुनिया में, क्या बताएं। एक व्यक्ति आया, कहता है क्यों हम भगवान को याद करें, क्या देता है वो। मैंने कहा अरे ये सब कुछ जो है ये किसने दिया, उसी का ही तो दिया हुआ है। कहते कौन कहता उसने दिया, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। बड़ा अभिमान दिखाए, माने ही नहीं कि ईश्वर विश्वर जैसे कोई चीज है भी। फिर कुछ सालों के बाद उनसे फिर मिलना हुआ, जो कुछ उसका था ना सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। बड़ा दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी। तो फिर मिलना हुआ तो कहता है कि हाँ भगवान ने मेरा सब कुछ ले लिया। अरे भाई भगवान, तुम तो भगवान को मानते ही नहीं थे, तुमने तो कहा ये मैं करता हूं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कमाई है, ये मैंने पाया है। अभी तुम भगवान को क्यों दोष देते हो कि भगवान ने तुम्हारा सब कुछ लिया। भगवान बेचारा तुम्हारा लेके करेगा क्या, ना उसको चाहिए तुम्हारा। हाँ भाई, ये कहते कि भगवान ने दिया है फिर भगवान ने लिया है, ये एक समझ की बात है। जिसकी जो चीज है वही तो वापस लेगा ना। मान लीजिए आप एक लाख रुपया किसी को देते हो, भाई मैं जरा ये मेरा संभाल के रखना, मैं एक महीने के बाद आपसे लूंगा। अब एक महीने के बाद आप उसके पास जाते हो और कहते हो हमें एक लाख रुपया दो, वो कहते हैं एक लाख रुपया क्यों दूंगा, तुमने दिया ही नहीं। कहेगा भाई दिया तो था, इसलिए लिखत ले लेते हैं सिग्नेचर सहित, कहीं कल धोखा ना दे दे। तो वो जो एक लाख रुपया दे, ये अमानत थी ना, तो वो अमानत तो रखी क्या, अमानत में ख्यानत डाल दी, अपना मोह डाल दिया और मेरा कह दिया का ये तो मेरा है। तो अमानत में ख्यानत डाल दी क्योंकि मोह रख दिया। तो इस संसार की जो भी चीजें वो भगवान की है। आरती में क्या गाते, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आरती के समय सब भगवान तेरा और बाकी समय मेरा मेरे तेरा भी मेरा, मेरे हाथ न लगा तो स्वार्थ हो गया ना। तो राजयोग के अनुसार प्रेम तो खत्म हो गया ईश्वर से, अब प्रेम कैसे जुड़े उसकी विधि क्या है, संबंध कैसे जुड़े वो बताया कि उसकी विधि है समानता। तो प्रेम कैसे जुड़े उसकी विधि क्या है, परमात्मा के की स्तुति गाते 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 उसमें खो जाओ। ये एक मनोविज्ञान है, जिसके गुणों का चिंतन करेंगे उनसे प्यार पैदा होगा और जिसके अवगुणों का चिंतन करेंगे उससे नफरत पैदा होगी। ये मनोविज्ञान है, मन की स्थिति है। तो जिससे भी प्यार का अनुभव करना उसकी उसके गुणों का चिंतन करो। तो कीर्तन क्या है, भजन क्या है, स्तुति क्या है, ये जो हम ईश्वर की करते हैं ये परमात्मा से प्रेम जुड़ने के लिए ही तो करते हैं। लेकिन प्रेम जुड़ते जुड़ते क्योंकि अंतर में स्वार्थ होता है तो प्रेम तो जुड़ता नहीं है, अंदर में आता है मैं क्या इनसे पाऊं, इनसे प्राप्त करूं। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना होता है ना, अब उनसे कुछ हमें चाहिए, बस सीधा कैसे कहें कि हमको तुम्हारे से ये चाहिए, तो पहले उसकी स्तुति गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, मस्का लगाएंगे ना, उसको मस्का कहते हैं, अमूल बटर, पहले पोलसन बटर था, अभी अमूल बटर बहुत है, तो बटर लगाएंगे, भाई तुम तो ऐसे हो, कितने महान हो, कितने अच्छे हो, आप तो दानी हो, आप तो ऐसे हो, आप ऐसे हो, फिर थोड़ा सा ये मेरा काम कर देना। तो जो समझदार व्यक्ति होता है ना वो जानता है ये मेरी महिमा कर रहा है पर अंदर में इसको कुछ चाहिए। तो जो समझदार होते हैं जिनके पास फुर्सत नहीं अपनी महिमा सुनने की, वो जानते हैं कि वो क्या है, वो कहेंगे पहले काम की बात बोलो, क्या चाहिए, सीधी बात ये सब तारीफ नहीं चाहिए तुम्हारे से, हमको जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तो भगवान की जो स्तुति गाते हैं किस लिए, क्या उनको बताने के लिए कि तुम ऐसे हो, उसको नहीं मालूम है क्या वो कौन है, हे भगवान तुम करुणा सिंधु हो, तुम रहम दिल हो, तुम दाता हो, तुम तो इतनी महिमा गाते फिर कहेंगे हे भगवान थोड़ी सी शांति दे दो। अब ये हो गया अज्ञान। तो राजयोग कहता है कि भिखारी की तरह गुण मत मांगो, पर ईश्वर से प्रेम जुड़ते जुड़ते उसमें खो जाओ। ये है तीसरा आधार प्रेम। और चौथा आधार है प्राप्ति। प्राप्ति जहां से प्राप्ति होती है ना उससे मन आपका हटेगा कैसे, कितनी प्राप्ति होती है, मिलता ही रहता है। तो ये जो कुछ है ये सब उसी का ही दिया हुआ है, हर वक्त अगर ये याद है कि उसी का दिया हुआ, ये तन भी उसका है, मन भी उनका, धन भी उनका, जो कुछ है ये सब उसकी देन है, तो वो हमें कैसे भूल सकता है, भूल सकता है। परंतु ये क्यों भूलता है, क्योंकि ये भूल जाते ही उसका दिया हुआ है। तो चारों आधारों को समझना है, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। जहां ये अनुभूति है इन चारों की तो मन और कहीं नहीं लगेगा। अब इसका और बहुत विस्तार है जो हम फिर आगे बताएंगे, लेकिन अभी जो सुना उसके आधार पर हम उसका अनुभव करेंगे, ठीक है। तो चलिए बैठिए फिर उसी योग की स्थिति में और अंतर में बहुत खुशी लाइए। खुशी किस बात की, खुशी कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था अब उसको मैंने पहचान लिया, मेरी भक्ति का मुझे फल मिल गया है, मुझे परमात्मा की सत्य पहचान हो गई है, मेरे सब संबंध ईश्वर के साथ हैं, कितनी खुशी है। उस परमात्मा से मुझे सर्व प्राप्ति होती है तो खुशी और बढ़ जाएगी। उसी से ही मेरी सच्ची प्रीत है तो उससे और खुशी बढ़ेगी। और फिर एक नशा चढ़ाओ, नशा। और वो नशा क्या है? जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसके साथ मेरे सब संबंध हैं, माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन। तो खुशी और नशा, ये दोनों बातें अगर मनस्थली स्थिति में है तो मेरा मन और कहीं नहीं जाएगा, एक की लगन में मग्न होंगे। बीच बीच में अगर आंखें बंद हो जाती है कोई बात नहीं, परंतु मन की आंख खुली रहे। ये क्यों कहते हैं कि ये आंखें खुली रखें? क्योंकि राजयोग के बदले निद्रा योग न हो, क्योंकि निद्रा योग में भी शांति की अनुभूति होती है, पर राजयोग में केवल शांति नहीं, क्योंकि परमात्मा से संबंध जुड़ा हुआ है, तो शांति के साथ प्रेम खुशी आनंद शक्ति सब सद्गुणों की अनुभूति होती है। आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाती है और परमात्मा से सब गुणों की वर्षा आत्मा पर होती रहती है। इसीलिए सीधा बैठेंगे, सतर्क होकर बैठेंगे। ये नहीं कि आंखें बंद सिर नीचा कमर झुकी हुई तो धीरे 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 राजयोग के बदले निद्रा योग हो जाएगा। हाँ, फिर आपसे पूछेंगे भाई साहब क्या अनुभव किया, आप कहेंगे बहन जी बहुत शांति मिली। पर वो शांति कौन सी थी? समझ गए ना? तो राजयोग में निद्रा नींद ये विघ्न डालती है। जिसको नींद की न आने की बीमारी है ना, इंसोम्निया है, नींद की गोली खानी पड़ती है कई लोगों को, उनके लिए राजयोग बहुत बड़ी औषधि है। गोली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकदम अशरीरी हो जाओ, आंखें बंद करके परमात्मा की गोद में, आत्मा जैसे बच्चा माँ की गोद में कैसे सो जाता है, एक सेकेंड में गोद में बैठा, उसको माँ हिलाती रहती है, उसको एकदम नींद आ जाती है। तो ये अनुभूति हम राजयोग में किस रूप से करें? ऐसे नहीं आंखें बंद करके तो वो नींद आएगी, उसके बदले परमात्मा को मात पिता के रूप में देखें, उनसे प्यार प्राप्त करें, उनसे सद्गुणों की अनुभूति करें, अधिकार रखें। तो चलिए इसका हम अनुभव करेंगे। भीतर जाएं, स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्यों आया इस जगत में? जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे कहां जाना है? मैं किसकी संतान हूं? अपने आप से ही प्रश्न करो और अपने आप को ही जवाब दो और जवाब देते देते उस स्थिति का अनुभव करो। मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा एक दिव्य ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, मैं दिव्य ज्योति आत्मा प्रकाश का पुंज आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर के इंद्रियों का मालिक हूँ। भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। ये शरीर तो एक वस्त्र के समान है, जिसे धारण कर इस सृष्टि मंच पर अभिनय कर रहा हूं। मुझ आत्मा ने कई शरीर रूपी वस्त्र धारण किए और अनेक अभिनय किए। पर मेरा व्यक्तित्व एक अमर ज्योति है। मेरा मूल वतन पांच तत्वों से पार, अखंड ज्योति का महतत्व है। जहां सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, इन पांच तत्वों से परे एक छठा मूल तत्व है, अखंड ज्योति का महतत्व। सुनहरे लाल प्रकाश का महतत्व। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा अपने वतन जा रही हूं। एक बेहद दुनिया जहां चारों ओर शांति ही शांति है। सुनहरा लाल प्रकाश है, इस प्रकाश के बीच मेरे प्यारे परम पिता शिव बाबा दिखाई दे रहे हैं। जो रूप में ज्योति बिंदु है, और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, उनकी अनंत शक्ति है, बेहद प्रकाश है, तेजोमय आभा है। जो शांति के सागर है, मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप। शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूं। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है, कैसी न्यारी और प्यारी स्थिति है। परमात्मा के सद्गुणों में खो जाए, और अनुभव करें अपने मूल स्वभाव को, शांति की शक्ति मुझ आत्मा में निहित है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति धाम मुझ आत्मा का मूल वतन है। शिव पिता का सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। शांति के स्रोत से निकलती हुई शांति की किरणें मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। धन्यवाद बाबा। आपने मुझे तीसरा नेत्र देकर शक्तिशाली बना दिया। मेरा अज्ञान अंधकार दूर हो गया। अब मैंने स्वयं को पहचान लिया है। अब इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर करते हुए वापस लौटे हैं। साकारी दुनिया में। और शरीर के द्वारा कर्म करते हुए आत्मा के गुणों को कर्म में व्यक्त करें, यही राजयोग की सार्थकता है। यही योग द्वारा कर्मों की कुशलता है। जीवन की सफलता है। ओम शांति शांति।